नमस्कार मित्रगण, रेडियो मधुबन में आपका फिर से स्वागत है और मैं लीना मेहंदले तुम्हारे लिए हर रविवार की तरह पठामी संस्कृतम कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ संस्कृत पढ़ने पढ़ाने की बात लेकर के उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, आज हम कुछ संस्कृत सूक्तों को सीखेंगे। ये छोटे छोटे सूक्त या वाक्य होते हैं, जैसे हम हिंदी में कहावत या मुहावरा कहते हैं, उस प्रकार के। लेकिन इन छोटे छोटे वाक्यों को स्मरण रखने से एक तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारे कार्यकलापों में कुछ अच्छाइयाँ आती रहती हैं, साथ ही ये वाक्य सदा हमारे मन में रहें, स्मरण में रहें, तो हमारा संस्कृत का अभ्यास भी निरंतर चलता रहता है। कुछ छोटे छोटे सरल वाक्य हम देखेंगे। सबसे पहला वाक्य है न मातुः परदैवतम्। माता से बढ़कर दूसरा दैवत कोई भी नहीं है। न मातुः परदैवतम्। दूसरा वाक्य देखो, गुरुणामेव सर्वेषां माता गुरुतरा स्मृता। जितने भी गुरु हैं उन सब गुरुओं के बीच, गुरुणाम उन सारे गुरुओं के बीच, उन सारे गुरुओं से पहले माता गुरुतरा स्मृता। माता को उन सारे गुरुओं से भी अधिक श्रेष्ठ गुरु, गुरुतर गुरु से भी अधिक बड़ा गुरु माना गया है। और एक सूक्ति है भिन्न रुचिर ही लोकः। लोगों की रुचि भिन्न भिन्न होती है। अब एक सुंदर सी सूक्ति देखो कि तृणाल लघुतरम तूलम तूलादपि च याचकः। तृण अर्थात घास, तिनका, तो तृणात् लघुतरम तूलम, तो जो घास होता है, तिनका होता है, उससे भी हल्का, उससे भी लघु क्या है, तो तूल अर्थात रुई। रुई जो है वो घास से भी हल्की है। लेकिन तूलादपि च याचकः, तूल से भी, उस रुई से भी हल्का क्या है, तो याचक है, जो किसी से मांगने जाता है। तो इसीलिए कहा है रहिमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही। चलिए आगे देखते हैं। एक सुंदर सा सूक्त है मौनम सर्वार्थ साधकम। मौन जो है वो सारे कामों को साध्य कर देता है, सबको साध लेता है। तो मौन रह करके हम बहुत बड़े बड़ी बातों को साध सकते हैं। इसलिए जब भी कहीं चर्चा चल रही हो तो मौन होकर के सुनना अधिक उपयोगी होता है, ना कि अधिक बोलना। अगली सूक्ति देखो सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। शास्त्र जो हैं वो सबके लिए लोचन अर्थात आँखों का काम करते हैं। अर्थात अगर हम शास्त्रों की पढ़ाई करें तो वह पढ़ाई हमारी आँखों के समान हमें कुछ दिखाने वाली, कुछ समझाने वाली इस प्रकार होती है। आगे एक बहुत ही सुंदर सूक्ति है कि षट कर्णो भिद्यते मंत्रः। मंत्र अगर षट कर्ण हो जाए तो भिद्यते, उसका नाश हो जाता है। अब यह षट कर्ण होने का क्या मतलब है? षट कर्ण अर्थात छह कान। अगर मंत्र छह कानों में पड़ा तो उसका नाश हो जाता है। अर्थात जब तक कोई भी मंत्र दो लोगों के बीच में हो, दो व्यक्तियों के बीच में हो, जब तक कोई बात, कोई गुप्त बात, कोई महत्वपूर्ण बात दो लोगों के बीच में ही हो, चार ही कानों तक सीमित रहे, तब तक उसका नाश नहीं होता है। लेकिन जहां वह षट कर्ण हो गई अर्थात दो की बजाय तीन लोगों तक पहुंच गई, उसके बाद वह बात फैलती जाती है, उसकी गुप्तता समाप्त हो जाती है, और इसीलिए उसकी जो भी एक गुप्त होने के कारण या गुप्त होने के कारण जो उसकी शक्ति सुरक्षित थी, उसका विनाश हो जाता है। अगला सूक्त है बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम। बालक भी हो फिर भी बालात अपि, बालक से भी अगर हम सुभाषित सुनते हैं तो उसे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि छोटा बच्चा है तो इससे हम क्या क्या सीखें? साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम। साक्षर व्यक्ति अगर विपरीत व्यवहार करने लगे तो वह राक्षस बन जाता है, क्योंकि अगर हम अक्षरों को देखते हैं साक्षरा और राक्षसा, साक्षरा को अगर उल्टा कर दिया तो हो जाता है राक्षसा। तो यहाँ पर इस सूक्ति में बताया गया है कि बात केवल वर्णाक्षरों को उलटने की नहीं है, लेकिन विपरीत व्यवहार करने की, विपरीत वर्ताव करने की बात है। तो साक्षर व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है, वह अगर उल्टा व्यवहार करने लगे तो वह राक्षस के समान बन जाता है। कुलम शीलेन रक्षते, शीलम भूषयते कुलम। शील से कुल की रक्षा होती है और शील से कुल का भूषण बढ़ता है, कुल को भूषित करता है शील। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। जो अप्रिय हो किंतु पथ्यकर हो, हितकर हो, ऐसा कहने वाला और ऐसा सुनने वाला दोनों ही दुर्लभ होते हैं। कोई भी सामने वाले व्यक्ति को अप्रिय बात कह करके अपने सर पर शत्रुता मोल नहीं लेना चाहता, और अगर कोई व्यक्ति हमारा हित करने के लिए भी अप्रिय बोलता हो तो वो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन आवश्यकता दोनों की होती है और मिलते दोनों ही नहीं हैं, दोनों ही दुर्लभ हैं। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। और मित्रों, अंत में हम एक श्लोक पढ़ेंगे, ये मैंने कठोपनिषद से लिया है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस तत्कवयो वदन्ति। अर्थात तुम उठो, जागो, और जो वर है, जो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, और प्राप्य वरान निबोधत, और यह निबोधत, सोचो, समझो, विचार करो कि तुम्हारे लिए श्रेष्ठ क्या है, यह जानो कि तुम्हारे लिए प्राप्य क्या है, क्या है जिसे तुम पाना चाहते हो, क्या है तुम्हारा ध्येय, और वह जो तुमने अपने लिए सर्वश्रेष्ठ ध्येय निश्चित किया है उसे निबोधत, उसको समझो, क्योंकि वही प्राप्य है, उसी को पाने के लिए प्रयास करने चाहिए, उसे पाने के लिए हर कोशिश में, हर प्रयास में लग जाओ। आगे कहा है कि यह काम सरल नहीं है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, क्षुर अर्थात छुरी या तलवार या चाकू, तो तलवार या छुरी की जो तेज धारा होती है, अगर उस पर किसी को चलना हो तो जितनी कठिनाई होगी उस प्रकार का कठिन यह पंथ होता है। दुर्गम पथस तत्कवयो वदन्ति। दुर्गम अर्थात बहुत कठिन यह पथ है, तत् कहा गया है ना, तो दुर्गम पथः तत्, तत् पथः दुर्गम, तो वह रास्ता, वह पथ बहुत ही दुर्गम है, और यह कवयो वदन्ति, जो कवि हैं अर्थात जो ज्ञानी पुरुष हैं, उन्होंने यह कह के रखा है कि वह पथ बहुत ही दुर्गम है, क्योंकि वह छुरी के धार पर चलने के जितना वह कठिन रास्ता है, लेकिन फिर भी हमें उसे पाना है, हमें उसी को सोचना है, उसी का निबोधन करना है, अर्थात उसी को समझना है, और इसके लिए हमें उठना है, जागना है, अपनी नींद को खोलना है, और उस सर्वश्रेष्ठ जो गुण है, वह जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसको पाने के लिए सारे प्रयास करने हैं। तो मित्रों, तुम्हें पता है कि कठोपनिषद की कथा जो है वह बताती है कि स्वयं यमराज ने नचिकेत को क्या ज्ञान दिया, तो किसी समय हम उस पूरे के पूरे उपनिषद के पाठ को भी समझेंगे। आज मैं यहीं विराम देती हूँ। तुम सुनते रहो पठामी संस्कृतम, सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।